नमस्कार, आज हम ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने कुछ साल पहले साहित्य जगत में काफी हलचल मचा दी थी।
हाँ,
डेविड ड्योब का उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक।
इस उपन्यास को 2021 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी मिला था और इसने वाकई युद्ध साहित्य को एक ऐसी आवाज दी है जिसे सुनना जरूरी भी है और मुश्किल भी है।
और लेखक के बारे में भी थोड़ा बताना जरूरी है। डेविड ड्योब वो खुद एक बहुत ही दिलचस्प पृष्ठभूमि से आते हैं।
बिल्कुल, उनके पिता सेनेगल से थे, माँ फ्रांस से, तो वो दो संस्कृतियों के बीच में पले बड़े हैं और इसका असर उनके लिखने में साफ दिखता है।
हाँ, और वो खुद साहित्य के प्रोफेसर हैं, तो इतिहास और खासकर उपनिवेशवाद की जो परतें हैं उन्हें खोलने में उन्हें महारत हासिल है।
और यही महारत हमें ले जाती है पहले विश्व युद्ध के उन पन्नों पर जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती।
सही कहा, ये कहानी है पश्चिम अफ्रीकी औपनिवेशिक सैनिकों की, जिन्हें ट्रायस सेनेगुलेज कहा जाता था।
हाँ, ये नाम सुनने में तो लगता है कि सब सेनेगल से होंगे, पर असल में ये पश्चिम अफ्रीका के अलग अलग उपनिवेशों से भर्ती किए गए सैनिक थे।
फ्रांस के लिए लड़ते थे, पर उनके साथ व्यवहार हमेशा दोयम दर्जे का होता था।
उन्हें एक तरह से युद्ध के हथियार की तरह देखा जाता था, इंसान की तरह नहीं।
तो आज हमारी चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो यही है कि युद्ध, उपनिवेशवाद और गहरा सदमा, ये किसी इंसान के मन को, उसकी आत्मा को किस हद तक तोड़ सकते हैं।
तो चलिए कहानी की उस दिल दहला देने वाली शुरुआत से ही शुरू करते हैं। उपन्यास का पहला पन्ना ही पाठक को झकझोर कर रख देता है।
बिल्कुल,
हमारा मुख्य किरदार है अल्फान निदिए, जो अपने दोस्त मदिम्बा डियोप को युद्ध के मैदान में देखता है, बुरी तरह घायल।
और मदिम्बा सिर्फ उसका दोस्त नहीं है, ना? लेखक एक खास शब्द इस्तेमाल करता है।
हाँ, भाई से बढ़कर दोस्त, एक रूहानी रिश्ता था दोनों का। एक ही गांव के, एक साथ पले बढ़े
और एक साथ ही फौज में भर्ती हुए।
बिल्कुल, और उस वक्त मदिम्बा की जो हालत है वो बहुत भयानक है। दुश्मन की संगीन ने उसका पेट फाड़ दिया है और वो बस कीचड़ और खून में लथपथ तड़प रहा है।
वो सीन पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सच में।
और मदिम्बा दर्द से कराते हुए अल्फा से भीख मांगता है। तीन बार कहता है, मुझे मार दो मेरे भाई, मेरी पीड़ा खत्म कर दो।
लेकिन अल्फा,
वो कुछ नहीं कर पाता।
नहीं,
वो बस उसे देखता रह जाता है जैसे पत्थर का बन गया हो, और वो अपने सबसे करीबी दोस्त को घंटों तड़प तड़प कर मरते हुए देखता है।
ये जो एक पल है ना, ये जो कुछ न कर पाने का पल है, यही तो पूरी कहानी की नींव है।
हाँ,
वो अपराध बोध कि मैं अपने दोस्त का दर्द खत्म नहीं कर पाया, ये एक ऐसा जहर बन जाता है जो अल्फा की रग रग में फैल जाता है।
वो खुद से कहता है कि भगवान ने उसे हुक्म दिया था, दोस्त ने भीख मांगी थी, पर वो एक कायर की तरह बस खड़ा रहा।
और इसी अपराध बोध से जन्म लेता है एक ऐसा अंधेरा जो उसे एक बिल्कुल अलग इंसान बना देता है।
वो उस पल के बाद वो अल्फा नहीं रहता जो वो पहले था।
नहीं, ये सिर्फ एक दोस्त की मौत नहीं है, ये अल्फा के अंदर की इंसानियत के, उसके सही गलत के पैमाने के टूटने की शुरुआत है।
और इस अपराध बोध से लड़ने के लिए या शायद उससे भागने के लिए वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो पागलपन और बदले की सारी हदें पार कर जाता है।
वो रास्ता एक भयानक अनुष्ठान का रूप ले लेता है।
हाँ, मदिम्बा की मौत के बाद हर लड़ाई के खत्म होने पर जब सब सैनिक वापस आ जाते हैं, अल्फा रात के अंधेरे में अकेले दुश्मन के इलाके में घुस जाता है।
अकेले?
अकेले। वहां वो एक नीली आंखों वाले जर्मन सैनिक को पकड़ता है, उसे जिंदा घसीटकर अपनी खाई में लाता है और फिर बेरहमी से उसकी जान ले लेता है।
और वो सिर्फ हत्या करके नहीं रुकता।
नहीं, वो उस मारे गए सैनिक का एक हाथ काटकर एक ट्रॉफी की तरह अपने पास रख लेता है।
शुरू शुरू में तो उसके फ्रांसीसी अफसरों और साथियों को ये बहादुरी लगती है ना?
बिल्कुल, वो उसे चॉकलेट कहकर उसकी पीठ थपथपाते हैं। उन्हें लगता है कि अल्फा उस जंगली और खूंखार अफ्रीकी सैनिक की छवि पर खरा उतर रहा है।
वाह, ये तो हमारा काम आसान कर रहा है।
हाँ,
और यहीं पर इस किताब का व्यंग कितना तीखा है। जिस जंगलीपन की तारीफ हो रही थी, जब वही चीज उनकी उम्मीदों से आगे निकल जाती है
तो उनका रवैया बदल जाता है।
हाँ
बिल्कुल, जब कटे हुए हाथों की संख्या एक से बढ़कर सात तक पहुंच जाती है तो तारीफ की जगह एक अजीब सा डर ले लेता है।
जो बहादुरी पहले फायदेमंद लग रही थी, अब वही खतरनाक लगने लगती है।
यहाँ तक के उसके अपने सेनेगली साथी भी उससे दूर भागने लगते हैं, वो उसे डेम कहकर बुलाने लगते हैं।
डेम मतलब
आत्मा खाने वाला या कोई जादूगर।
तो जो इंसान अपने दोस्त को न बचा पाने के अपराध बोध से लड़ रहा था, वो अब अपने ही लोगों के बीच अछूत बन जाता है।
यही विडंबना है।
तो सवाल ये उठता है कि ये जो अनुष्ठान था अल्फा का, ये सिर्फ बदला था या अपने अपराध बोध से माफी पाने का कोई तरीका?
मुझे लगता है ये दोनों का एक बहुत ही उलझा हुआ रूप है। एक तरफ तो वो दुश्मन को वही दर्द देना चाहता है जो उसके दोस्त ने सहा,
और दूसरी तरफ वो खुद को ये साबित करना चाहता है कि वो कायर नहीं है, कि वो भी मार सकता है।
शायद उसे लगता है कि हर कटे हुए हाथ के साथ उसके ऊपर से अपराध बोध का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा।
और ये औपनिवेशिक मानसिकता पर एक जबरदस्त तमाचा है।
हाँ बिल्कुल।
फ्रांसीसी सेना अफ्रीकी सैनिकों से बर्बरता की उम्मीद तो करती है, लेकिन जब अल्फा उस बर्बरता को उनकी सोच से भी ज्यादा भयानक रूप में दिखाता है तो वो खुद डर जाते हैं।
यह उनके पाखंड को दिखाता है। उन्हें सभ्य बर्बरता चाहिए थी जो उनके नियंत्रण में रहे।
और इसमें जो प्रतीक हैं, जैसे कटी हुई नीली आंखें,
कटे हुए हाथ और नीली आंखें, नीली आंखें दुश्मन का प्रतीक हैं। लेकिन जब अल्फा उन्हें बार बार देखता है तो वो दूसरा कोई अनजान दुश्मन नहीं रहता,
वो एक इंसान बन जाता है जिसे वो खत्म कर रहा है।
और हाथ, हाथ तो शक्ति का प्रतीक होते हैं। युद्ध ने उसे शक्तिहीन महसूस कराया था, अब वो दूसरों के हाथ काटकर उस शक्ति को वापस पाने की एक विकृत कोशिश कर रहा है।
एक ऐसी शक्ति जो उसे अंदर से और खोखला करती जाती है।
और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, अल्फा लड़ाई में घायल हो जाता है।
उसे मोर्चे से हटाकर एक फील्ड अस्पताल में भेज दिया जाता है।
हाँ, और यहां बाहर का युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन उसके मन के भीतर का युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है,
क्योंकि अब लड़ने के लिए कोई दुश्मन नहीं है,
कोई जर्मन सैनिक नहीं है। अब उसके पास सिर्फ उसकी यादें हैं और उसका अकेलापन।
और वो यादें उसे कहां ले जाती हैं?
अपने अतीत में। उसे अपना गांव गांडियोल याद आता है, अपने पिता, अपनी माँ जो उसे छोड़कर चली गई थी, और सबसे ज्यादा मदेम्बा के साथ बिताया बचपन।
लेकिन ये यादें कोई सीधी साधी नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। टूटी फूटी हैं, धुंधली हैं, सपनों की तरह। एक पल वो अस्पताल में है तो अगले ही पल अपने गांव में खेल रहा है।
और यहीं पे लेखक के लिखने की शैली का जादू सामने आता है।
हाँ, ये जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है वो हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे अल्फा के उलझे हुए दिमाग के अंदर ले जाकर पटक देती है।
हम दुनिया को उसकी आंखों से देखते हैं, उसके डर, उसके भ्रम को महसूस करते हैं।
वो एक अविश्वसनीय कथावाचक है। हमें लगातार सोचना पड़ता है कि जो वो बता रहा है उसमें कितना सच है और कितना उसके मन का वहम।
ये बात मुझे इस किताब की सबसे असरदार लगी। लेखक चाहता तो एक सीधी कहानी बता सकता था, गांव, फिर युद्ध, फिर अस्पताल।
हाँ, पर उसने जानबूझकर हमें अल्फा के टूटे हुए दिमाग की भूलभुलैया में फेंक दिया। ये एक बहुत बेचैन करने वाला अनुभव है।
बिल्कुल, और इसमें दोहराव का भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है।
हाँ, अल्फा बार बार कुछ लाइनें दोहराता है जैसे मुझे पता है, मैं समझता हूँ।
ये एक मंत्र जैसा लगता है।
हाँ, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि उसके कामों के पीछे कोई वजह थी, जबकि असल में वो खुद गहरे भ्रम में डूबता जा रहा है।
और समय का जो प्रवाह है वो भी सीधा नहीं है। वर्तमान और अतीत एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं।
ये दिखाता है कि कोई गहरा सदमा, कोई ट्रॉमा समय की हमारी धारणा को कैसे तोड़ देता है। अतीत कभी मरता नहीं, वो हमेशा वर्तमान में जिंदा रहता है।
और फिर कहानी अपने उस चरम पर पहुंचती है जहां अल्फा की अपनी पहचान ही बिखरने लगती है।
हाँ, धीरे धीरे उसे ये यकीन होने लगता है कि वो अल्फा है ही नहीं।
उसे लगता है कि वो
मदेम्बा है।
हाँ, वो मदेम्बा है जो अल्फा के शरीर का इस्तेमाल करके अपनी कहानी सुना रहा है।
किताब में आवाज इस तरह बदलती है कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन बोल रहा है,
अल्फा या मदेम्बा।
और ये जो दो पहचानों का आपस में घुल जाना है, ये बहुत दुखद है, लेकिन शायद यही अल्फा के लिए उस असहनीय अपराध बोध से बचने का आखिरी रास्ता था।
मतलब अगर वो खुद मदेम्बा बन जाता है तो उसे उस अल्फा के बोझ के साथ नहीं जीना पड़ेगा जिसने अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया था।
हाँ, वो अपनी उस पहचान से ही आजाद हो जाता है जिसने उसे इतना दर्द दिया।
और ये अंत हमें उपन्यास के उन बड़े सवालों पर वापस ले आता है। सबसे पहला तो है युद्ध का अमानवीयकरण।
युद्ध कैसे इंसानों से उनकी इंसानियत छीन लेता है, उन्हें या तो शिकार बना देता है या शिकारी, या फिर दोनों ही।
दूसरा बड़ा मुद्दा है उपनिवेशवाद और नस्लीय शोषण।
हाँ, ये उपन्यास साफ दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक ताकतों ने अपने अधीन लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया,
उन्हें चॉकलेट कहा, उनकी बर्बरता का तब तक जश्न मनाया जब तक वो उनके फायदे में थी,
और जैसे ही वो उनके नियंत्रण से बाहर हुई तो उसे पागल करार दे दिया। ये उस पूरी व्यवस्था के पाखंड को नंगा करता है।
और तीसरा, जो शायद सबसे गहरा विषय है, वो है पहचान और विवेक की नाजुकता।
कि कैसे मुश्किल हालात में स्व की हमारी धारणा, हमारी पहचान कितनी आसानी से बिखर सकती है।
हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
और आखिर में उपन्यास का शीर्षक At night all blood is black।
रात में सारा लहू काला होता है।
ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, ये उपन्यास का पूरा सार है। रात के अंधेरे में और मौत के सामने नस्ल, राष्ट्रीयता, वर्दी, ये सारे फर्क मिट जाते हैं।
जो बचता है वो है सिर्फ साझा इंसानियत और साझा लहू।
ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि युद्ध के घाव सिर्फ जिस्म पर नहीं लगते, वो रूह में बस जाते हैं और उनका असर पीढ़ियों तक रहता है।
डेविड डीओप हमें इतिहास के उन पन्नों को देखने पर मजबूर करते हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ये सवाल उठाते हैं कि सभ्य और बर्बर होने का असली मतलब क्या है। शायद सबसे बड़ी बर्बरता तो युद्ध खुद है,
न कि उस युद्ध में पागल हो जाने वाला एक अकेला सैनिक।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।